Om Shanti, good morning or Namaskar. Honorable Chairperson, respected Shri V.K. Srivastavji, Managing Director, Bokaro Steel Plant, Bokaro, respected Sister Suman, respected Sister Jyoti, and my dear friends at the audience. Friends, it gives me immense pleasure to be in an intellectual crowd today, consisting of scientists and engineers. विशेष तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सुंदर पर्पस होता है टू मेक ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल एंड सर विथ योर परमिशन आई विश टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड अ सिंसियर अप्रिसिएशन टू द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी टू मेक द ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल लेकिन विशेष तौर पर आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे एंड दैट इज हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है एक बार द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम एक स्टूडेंट ने खड़े होकर पूछा मैडम व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड द टीचर वुड गिव दिस आंसर इमीडिएटली ही एक्सपेक्टेड कि शायद टीचर कहेंगे गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन यू नो अर्न लॉट ऑफ मनी नेम फेम But the student was very surprised. The teacher एक मिनट साइलेंस में चले गए और उनसे मुस्कुराते हुए कहा लेट मी थिंक ओवर इट और मैं जरूर उसका जवाब दूंगी After a couple of days, teacher फिर से क्लासरूम में आए और वह स्टूडेंट को बुलाया और कहा कुछ दिन पहले आपने जीवन का उद्देश्य पूछा था ना तो शायद मुझे एक apt आंसर मिला है और उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया The purpose of life is Can we make this society a better place than what we had received it? जब हम इस धरती पर आए थे तो समाज की कंडीशन कैसी थी और जब हम जीवन छोड़कर जाते हैं अगर हमने समाज को ठीक करने के लिए थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया that could be our purpose of life. जब ये बात मैंने किताब में पढ़ी तो मैंने कहा कि let me get across to the people. और विशेष तौर पर जब मोहन भाई जी ने भी मुझे ये टॉपिक दिया तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम रिसर्च करते हैं लोगों से मिलते हैं और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला फैकल्टी मेंबर्स से मिला वेरिड फील्ड साइंटिस्ट इंजीनियर्स डॉक्टर्स सोशल वर्कर्स पॉलिटिशियंस बहुत लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया बस मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली कुड बी अ पर्पस ऑफ लाइफ एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स मैं एक बहुत अच्छे गुलदस्ते को लेकर आया हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और ये सेशन खत्म होने के बाद आप अपनी जीवन का भी कुछ एक उद्देश्य है तो जरूर मेरे साथ शेयर करना सो दैट वी आर ऑल्सो इक्वली एनलाइटेंड सो विथ योर परमिशन वी स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ मैं इसको थोड़ा इंट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूं विद द चेयरपर्सन परमिशन फ्रेंड्स व्हाट आई एम गोइंग टू नेम 10 वर्ड्स एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इट कोई लिखेगा नहीं ठीक है इट्स अ वेरी सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपको 10 शब्द दूंगा और वो 10 शब्द आप उसको याद करने की कोशिश करना एम आई ओके कैन आई स्टार्ट सो ऑल द बेस्ट गुड लक टू ऑल ऑफ यू नंबर 1 जर्नी नंबर 1 जर्नी नंबर 2 गार्डन नंबर 3 song geet number 4th dance nritya number 5th prayer prarthana number 6th book kitab number 7th चैलेंज चुनौती नंबर 8 ड्रामा नाटक नंबर 9 मिरर दर्पण 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस अनुभव अच्छा बताइए फ्रेंड्स 10 में से कितनों को कितना याद है थोड़े शेयर करेंगे हाँ हाँ बताइए नंबर 1 2 3 4 4, 5. Okay, okay, fine, fine, fine. अब मैं, I understand, आपकी memory बहुत अच्छी है. I really appreciate the audience. लेकिन मैं आपको help करता हूँ. I will help you to remember these 10 words once again. So my good friend Ajay Bhai will help. Number one, आप देखते रहना journey. Okay? These pictures will help you to take a better view. Number two, क्या है? Garden. Number three, song. Number fourth, oh wonderful, fourth is dance. Number fifth, prayer. Number sixth, yes, number sixth is book. Number seventh, challenge. Number eighth, drama. Number ninth, mirror. Number tenth, experience. Click once again. Yeah. ठीक है, अच्छा. अगर फिर भी अगर आपको ये 10 शब्द याद नहीं आ रहे तो I'll make it still easier for you. Okay? Now, again, listen to me very carefully. So that's book. What's the next one? Prayer. Dance. We are going in the reverse order, huh? For your kind information. Journey. Okay? So now we'll go from here and we'll move on to that end. Now, कैसे ये 10 शब्द को याद करना है? बहुत ध्यान से सुनना. एक दिन हम सभी जर्नी के लिए निकले. जैसे जर्नी में गए तो हमने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा. जब गार्डन में पहुंचे तो वहां लोग सिंगिंग कर रहे थे. हम भी पहुंचे तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, तो हम भी उनके साथ डांस भी करने लगे. और अचानक हमें दूर से एक प्रेयर सुनाई दी. लेट अस रिवाइंड द स्टोरी. कहां के लिए निकले? जर्नी. क्या देखा? फिर क्या वहां पे आपने देखा? सॉन्ग. आपने क्या किया? फिर अचानक क्या सुनाई दिया? प्रेयर. जैसे हम वहां पहुंचे तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें एक बुक दिया. जैसे हम बुक रीड करने लगे, इट वॉज अ वेरी ग्रेट चैलेंज, क्योंकि इट स्पोक अबाउट द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा. सिर्फ ये जीवन की कहानी नहीं थी, इट वॉज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा. और जैसे जैसे मैं वो किताब पढ़ने लगा तो इट एक्टेड एज अ मिरर, जहां मैं अपने आप को देखने लगा. मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए और ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर की. ठीक है, अभी फिर से रिवाइंड करते हैं. कहां से जा रहे थे? जर्नी. क्या देखा? फिर क्या किया? सॉन्ग. फिर प्रेयर. फिर बुक. नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रामा. नेक्स्ट मिरर. लास्ट ओके, आई जस्ट वंस अगेन. वन टू थ्री फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन चैलेंज. एट ड्रामा. नाइन मिरर. 10. सभी अपना राइट हैंड ऐसे रखें, राइट हैंड. अभी आपने पीठ को थपथपाओ. गुड मेमोरी, गुड मेमोरी. क्या मेमोरी हो गई है. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ओके, अच्छा. नाउ व्हाई डिड वी अंडरस्टैंड दिस 10 वर्ड्स? एक्चुअली ना, जो मैंने बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सब ने मुझे एक एक शब्द के साथ जोड़ा. राइट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. द वेरी फर्स्ट वन, दिस इज फ्रेंड्स, लाइफ is a very wonderful journey, not a destination. जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं. What is the purpose? The purpose of life is, can I enjoy this process of the journey? है ना? Suppose अगर मुझे दिल्ली से माउंट अबू आना है, right? तो ऐसा नहीं कि मैं जब माउंट अबू पहुंचू तो ही मैं बहुत खुशी में रह सकता हूं. No, हर स्टेप में can I enjoy the journey? मैं स्टेशन में पहुंचता हूं और अचानक मैं देखता हूं कि माय नेम इज देयर इन द वेटिंग लिस्ट. कैन आई एंजॉय दोस इमोशंस? अगर मैं कर सकता हूं तो लाइफ रियली बिकम सो वंडरफुल एंड ग्रेट. वैसे फ्रेंड, सोचने की बात यह है, स्थूल जर्नी तो हम सभी करते हैं, लेकिन कैन आई लुक लाइफ एट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव? ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड से थोड़ा हम उठकर यात्रा कर सकते क्या? और अगर उसका अनुभव करना है तो आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब आप फ्लाइट में बैठते हो, जब फ्लाइट में बैठते हो तो उसके तीन बातें आप अनुभव कर सकते हो. एक तो आप जल्दी पहुंचते अपने मंजिल में. इफ आई वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली और अगर मेरे पास समय कम है तो यूजुअली वी टेक अ फ्लाइट. तो नंबर वन एडवांटेज इज कि आप बहुत जल्दी पहुंचते हो. नंबर टू, जब आप फ्लाइट में बैठते हो और जब फ्लाइट बहुत ऊंचाई में चली जाती है ना, तो आप ऊपर से देखना तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी आपको छोटे छोटे नजर आएंगे. एंड तीसरा अनुभव आप करेंगे कि जब आप फ्लाइट में बैठे हैं, इट इज ट्रैवलिंग एट सच अ टेरिफिक वेलोसिटी, लेकिन आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं. आपको लगेगा कि जैसे आप फ्लाइट में एक स्थिर है ना, स्टैग्नेंट पोजिशन में बैठे हो. आप सभी का यही अनुभव है, यस और नो? उसी तरह मेडिटेशन इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक दैट टेक्स अस टू एन इटर्नल जर्नी. और जब आप उस जर्नी, जब थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड से हटकर आप उस जर्नी में जाने लगते हो, तो आप तीन बातों को महसूस करोगे. एक, आप अपनी मंजिल में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. इट विल इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी. आपको जो लाइफ में चाहिए ऑटोमेटिकली आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेगा. हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, जो आपको चाहिए, बट जल्दी मिलेगा. वन. नंबर टू, जब आप उस मेडिटेशन की उस जर्नी में जाते हो तो आप महसूस करोगे कि लाइफ की बड़ी बड़ी परिस्थितियां आपको बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे. और तीसरी बात, जब आप वो जर्नी जाते हो इतना स्मूथ जर्नी होता है, बट द सेम टाइम यू आर ट्रैवलिंग एट अ टेरिफिक वेलोसिटी. जब प्लेन जब धरती पर टच करती है तब आप रियलाइज करते हो, माय गॉड, इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ गुड वेलोसिटी विच इज मच लेस देन कंपेयर्ड टू द स्काईज. तो वन ऑफ द पर्पसेस कि क्या मैं इस इटर्नल जर्नी मेडिटेशन को सीख सकता हूं और उसको आप एंजॉय करिए, दैट इज वन ऑफ द पर्पस. नंबर टू, कहते हैं लाइफ इज अ वेरी वंडरफुल. सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या था? गार्डन. लाइफ इज अ गार्डन. जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है. वॉट शुड बी द पर्पस? वॉट शुड बी द पर्पस? कैन आई स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स? कैन आई स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स? तो क्या करना है हमें फ्रेंड्स? जीवन में कभी ना कभी आप प्रकृति के नजदीक जाइए. गो वेरी क्लोज टू नेचर, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और वो प्रकृति के साथ नजदीक रहने की कोशिश कीजिए. और जब आप वहां पर रहते हो, आप महसूस करोगे द डीप साइलेंस. आप यहां पे ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में आए हो, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि सुबह 4:30, 5:30 बजे आप इस कैंपस के साइलेंस को ऑब्जर्व करना. हो सके तो थोड़ा उस तरफ जाना, कैंपस के बाहर नहीं जाना, लेकिन हमारे पास एक ऐसी जगह है, काफी जगह है, आप वहां पर जाके इस साइलेंस का अनुभव करो. और जितना आप प्रकृति के साइलेंस को अनुभव कर सकते हो, आप महसूस करेंगे कि लाइफ हैज गॉट अ वेरी डिफरेंट डायमेंशंस. अनफॉर्चुनेटली हम इतनी आवाज में आते हैं कि धीरे धीरे हम रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं. सो गो क्लोज टू नेचर और स्प्रेड द फ्रेग्रेंस. क्या करना है? देखिए, नेचर के दो शब्द हो, दो मीनिंग होते हैं. एक तो नेचर इज प्रकृति, और दूसरा नेचर का अर्थ होता है हर एक व्यक्ति का नेचर. गुलदस्ता भी तभी अच्छा लगता है जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं. उसी तरह ये जीवन भी एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग नेचर है, अलग अलग वैल्यू सिस्टम है. कैन आई लुक एट द पॉजिटिविटी ऑफ एवरी ह्यूमन बींग एंड कैन आई इनकल्केट इन माई ओन लाइफ? एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल पर्पस, स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वंडरफुल वैल्यू सिस्टम. नंबर थर्ड कौन सा है? लाइफ इज अ सॉन्ग. Life is a song. तो क्या करना है? We have to sing it. है ना? Sing melodiously. है ना? Sing melodiously. The other day I was in Bombay और मैंने बहुत सुंदर concert में मुझे invite किया गया. That was organized by the Rotary District 3140. और जब मुझे वो program में बुलाया गया तो मुझे बताया गया कि स्वामी भाई ये concert unique concert है. मैंने कहा what is so unique about it? बोला इसमें जो भी participants जो गीत बजा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, दे टोटली ब्लाइंड पीपल. एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, वो जो कुछ समय मैं उनके साथ बिताए, इट बिकेम अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी. इट वॉज अ वेरी वंडरफुल कलरफुल शो बाय दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ. लेकिन इतना सुंदर गीत उन्होंने गाया और मैं उनको देखकर यही महसूस कर रहा था कि ये जो लोग जिन्होंने दुनिया को देखा नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भावना, इतनी अच्छी इमोशंस अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वी ह्यूमन बींग्स हर पल हर क्षण हमें गीत गाना चाहिए. फ्रेंड्स, मैं इस बात को मानता हूं कि हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते हैं. शायद वो आर्टिस्ट की तरह भी हम गीत नहीं गा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे बोल तो मधुर हो सकते हैं ना। जब भी हम किसी से बातें करें तो कैन माई वर्ड्स बी वेरी स्वीट मेलोडियस, एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक स्लोगन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हर दिन हम सुबह प्रातः मुरली क्लास के बाद रिपीट करते हैं, और हमारे जो सिस्टर इंचार्ज होते हैं शी इज वेरी वेरी कॉन्शियस कि हर लोग बोलो, और वो है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोचकर बोलो। मैं आप एक और बार रिपीट करूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे फ्रेंड्स? हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच के बोलो, राइट? यस, अवर वर्ड शुड बी वेरी वेरी स्वीट, सॉफ्ट, मेलोडियस। नेक्स्ट, लाइफ इज अ डांस, तो क्या करना है? लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, उमंग उत्साह, है ना? दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हम इतने उमंग उत्साह में रहे कि जो भी हमसे मिले उनको भी वो उमंग और उत्साह आए। आज साइंटिस्ट और इंजीनियर जो होते हैं ना, जब वो रोबोट बनाते हैं तो 2 degree freedom, 3 degree freedom, 5 degree freedom का जब वो रोबोट बनाते हैं, दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। माय गॉड, आई हैव क्रिएटेड अ रोबोट विच इज 6 degree freedom, 7 degree freedom। फ्रेंड्स, ईश्वर ने हमको एक बहुत सुंदर ये गाड़ी दी है, ये कितनी डिग्री फ्रीडम में हम काम कर सकते हैं? 360 डिग्री, समझ में चलेंगे, इन्फाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितना इन्फाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम काम कर सकते हैं, हम इसको यूज तो करें। कैन आई डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म? जीवन के हर परिस्थिति में हम बहुत खुशी में रहे। और अक्सर करके हम अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, 10 questions एंड नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेम्प्ट। At that moment also, if you are in a very happy state of condition, with joy, enthusiasm, smiling, believe me, आप जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, राइट? दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये डांस की बात आती है, कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डांस? हाँ, है ना भाई, डांस तो करना चाहिए, है ना? मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ पीकॉक डांस। नाउ दिस a set of exercises that has been devised by Dr. Girish Patel, a very famous psychiatrist from Mumbai, jisko wo psychophysical dynamic exercises kehte hain, aur usme sabse acha exercise to mujhe ye lagta hai, peacock exercise. To main aapko 2 minute mein bataunga. Can I get a stand? Yeah, peacock exercise, hai na? It's a very beautiful exercise. Can I go there? Okay. आप बैठकर करना और बहुत एंजॉय करना और एकदम उमंग और उत्साह के साथ करना। ओके, एक्सरसाइज पहले देखना और फिर आप करेंगे। जैसे ना सुबह उठकर भी आप ये कर सकते हैं, जैसे पीकॉक जब डांस करता है ना, जब वो बहुत खुशी में होता है तो डांस करता है, तो ऐसे आप भी करना, वाह ईश्वर वाह। तो जब आप करोगे तो एक्चुअली पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी वंडरफुल सजेशन टू योर माइंड। तो वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह। ठीक है, सभी करेंगे? तो चलो बैठ कर खुशी से करना, है ना? और देख लो आजू बाजू किसी को नींद आ रही तो वो नींद भी चली जाएगी। ओके, गुड, चलिए, है ना? चलो बैठेंगे और करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा तो वही बोलकर भी आपको करना है। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे किड्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह, वाह मेरे बॉस वाह। इसको 2 बार करना, वाह मेरे बॉस वाह। ये अगर आप कर लिए मतलब आपका इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, 1 मिनट। वाह साइंटिस्ट इंजीनियर्स वाह, वाह दिस सेमिनार वाह, वाह ज्ञान सरोवर वाह वाह ईश्वर वाह 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 वाह। हाँ अभी तालियां बजाइए। दिस काइंड ऑफ आप एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल पंप इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? लाइफ इज अ प्रेयर। जीवन एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ अ लाइफ? कैन आई हैव फेथ इन दैट ऑलमाइटी गॉड? क्या हमें इस पर पूर्ण विश्वास है, निश्चय है? कहते हैं अगर भगवान एक दिन आपको जर्नी में लेकर जाए और आपका हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, बहुत ऊंची माउंटेन में लेकर जाते हैं और आपसे कहते हैं मीठे बच्चे छलांग मारो, अगर ईश्वर कहते हैं और अगर आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास है ना, जंप इट। और अगर आपने जंप किया ना, दो बातें हो सकती है, या तो ईश्वर आपको अपनी गोद में पकड़ लेंगे, नहीं तो ईश्वर आपको उड़ना सिखा देंगे। आइदर ही विल कैच यू इन योर आर्म्स और ही विल टीच यू हाउ टू फ्लाई। कैन आई हैव दैट अनकंडीशनल फेथ इन दैट ऑलमाइटी गॉड? छोटा बच्चा होता है ना, जब रोड क्रॉस करता है, जब अकेला होता है ना, तो डर जाता है, लेफ्ट देखेगा राइट देखेगा, थोड़ा जाएगा और पीछे आ जाएगा। लेकिन जब उसके पापा उनके साथ होते तो क्या करता है, अपना हाथ पापा के हाथ में दे देता है, टोटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स। छोटा बच्चा जब होता ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है ना, तो ही सो एक्साइटेड बाय सीइंग थिंग्स, वो भागेगा पीछे पीछे, उसकी मम्मी भी भागेगी। अचानक बच्चा जो होता है मम्मी से भटक जाता है, बच्चे की अवस्था क्या होगी? रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, आंखों के सामने अंधकार हो जाएगा। उस भीड़ में वो अपनी मम्मी को ढूंढेगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसे उसका डर भी बढ़ता जाता है। अचानक दूर खड़े उसको अपनी मम्मी दिख जाते हैं जिसको ढूंढ रहे होते हैं। एक सेकंड में सारा स्ट्रेस खत्म। वो बच्चा दौड़ कर जाएगा, मम्मी से लिपट जाएगा, रोने लगेगा खुशी के आंसू, क्योंकि उसने उस भीड़ में अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई किया। उसी तरह अगर हमें स्ट्रेस होता है तो उसका एक कारण हो सकता है कि हमने अपने असली मम्मी डैडी को आइडेंटिफाई नहीं किया। शरीर के मातपिता तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस आत्मा के मातपिता कौन है वो हमने अभी तक नहीं समझा है। और जिस दिन हमने इस पिता परमात्मा को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा भी स्ट्रेस उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे उस छोटे से बच्चे का स्ट्रेस खत्म हुआ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का सुबह जो मेडिटेशन का जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है, सुबह का लेक्चर, आप जरूर जरूर अटेंड कीजिए, जहां पे आज आपको आत्मा का परिचय मिला, कल आपको उस परमात्मा का परिचय मिलेगा। और ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, कहते हैं तीन प्रकार के मत होते हैं। एक तो होता है मन मत, दूसरा होता है पर मत, तीसरा होता है श्रीमत। अभी तक जो भी हमने जीवन जिए ना, ये मन मत और पर मत से किए, और उसका एंड रिजल्ट क्या है हम सभी अनुभवी हैं। अब अगर हो सके ना तो श्रीमत पर चलो। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ मत, वो जो ईश्वर जो हमें मत देता है, अनकंडीशनली इफ आई फॉलो, बिलीव मी ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वेल बींग। कैन आई हैव दैट अल्टीमेट फेथ इन दैट ऑलमाइटी गॉड? दैट इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्या है? बुक। लाइफ इज अ बुक। क्या करना है? व्हाट इज द पर्पस? रीड इट, है ना। हाँ, मैं कुछ स्थूल किताबों की भी बात कहता हूं। जीवन में एक लक्ष्य रखना है कि हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहिए। रिसेंटली आई वॉज एबल टू रीड अ कपल ऑफ बुक्स, जो आपने भी पढ़ी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट बुक बाय मिस्टर रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी? कितनों ने पढ़ी? हाथ उठाइए। वेरी गुड। जितनों ने नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ना, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। बस उस बुक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब आप बुक पढ़ना आरंभ करते हो, फिर जब तक वो खत्म नहीं करोगे आपको दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम विद दैट बुक, अदरवाइज इट्स सच अ वंडरफुल बुक। ऐसी किताबों के अलावा जब आप यहां पे ज्ञान सरोवर में आए हैं ना, ये जो किताबें जो मैंने जिक्र किया है, यस इट स्पीक्स अबाउट मोर ऑफ द थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड लाइफ एक्सेट्रा, लेकिन अगर आपको हायर डायमेंशन पे जाना है तो मैं तीन किताबों को आपको मैं जिक्र करूंगा जो आपको हमारे यहां के लाइब्रेरी से अवेलेबल होगा। आप जरूर ये किताबें लेकर जाना, जरूर पढ़ना। नंबर वन इज द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी। नंबर टू, जो हम सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को पढ़ना चाहिए, दैट इज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जरूर आप खरीदिए किताब, दूसरी किताब। तीसरी किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दैट इज आदिदेव ब्रह्मा, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिन्होंने कैसे प्रेरणा से उन्होंने ये बहुत वंडरफुल विजन बनाया, कैसे ईश्वर ने उनको विजन दिया और कैसे ये विद्यालय का कार्य चल रहा है आप जरूर सीख सकते हैं। लाइफ इज अ बुक, अर्थात सिर्फ किताब पढ़ने की बात नहीं है, हमें हर एक व्यक्ति का जीवन भी एक बुक है। इट कुड बी अ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अगर आप सबके यहां पर अनुभव अगर आप शेयर करने लगे, इट वुड बिकम अ शास्त्र इन इटसेल्फ। दूसरों के अनुभव से हम सीखे, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ इज अ बुक, वी हैव टू रीड इट। नेक्स्ट क्या है? लाइफ इज अ चैलेंज। जीवन एक बहुत सुंदर चुनौती है, तो हमें क्या करना है? एक्सेप्ट एंड फेस इट विथ करेज। चुनौती को एक्सेप्ट करो, परिस्थितियां आएंगी। कैन आई एक्सेप्ट इट एंड कैन आई फेस इट विथ टोटल करेज एंड कन्विक्शन। एक बार मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा था विच रियली मोटिवेटेड मी, जहां पे एक रिपोर्टर को बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में बुलाया गया। जब वो वहां गए तो देखे छोटे छोटे बच्चे ना पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकेंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि 10 वर्ष के बच्चे को एक व्यक्ति स्टेज पर लेकर जा रहे हैं, और ये रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उसके पास जाकर पूछे एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग्स? तो उस बच्चे ने कहा मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, बट आई एम वेरी सॉरी टू लिसन टू दिस, बट हाउ डिड दिस हैपन? बोले जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने पूछा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? तो ने कहा प्लीज गो अहेड। तो रिपोर्टर ने पूछा आपकी उम्र के बच्चे कितना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष का बच्चा हु स्टेज इन मलाड मुंबई, उनका बहुत ब्यूटीफुल जवाब था मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी, और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? इसे इंग्लिश में बहुत अच्छा स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। करेक्ट। मेरे लाइफ में भी अगर मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए होती ना, आई जस्ट गो एंड विजिट टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल इन मुंबई, और छोटे छोटे मैं बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, लेकिन जीवन के प्रति इतना आस्था, इतना विश्वास। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि विश्वास है उनको सुप्रीम सर्जन पर, विश्वास है उनको डॉक्टर्स पर, विश्वास है उनको मेडिसिन पर। और उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है, और मुझे ऐसा आवाज आता है हे प्रोफेसर स्वामीनाथन, अगर ये छोटे बच्चे फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर कैन एक्सेप्ट द चैलेंज एंड फेस इट, सर यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू बी सैड इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड, यू डोंट हैव अ लाइसेंस, एंड दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगे, ख्वाबों के पर्दे इरादों से हटाएंगे, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि यही ठोकरे हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे, यही ठोकरे हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे। यस, इट्स अ चैलेंज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, लाइफ इज अ वेरी वंडरफुल ड्रामा। तो क्या करना है? यस ब्रदर, प्ले द रोल ऑफ अ हीरो। ये बहुत सुंदर एक वंडरफुल नाटक है। एवरी वन ऑफ अस आर प्लेइंग रोल्स, प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर, ओके मे बी द प्लेइंग द रोल ऑफ अ बॉस, प्लेइंग द रोल ऑफ अ सन। हर एक व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत रोल कॉन्शियस होते हैं। 7 बजे जो होगा वो कहानी की किताब पढ़ रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, और जैसे ही घंटी बजी वो छोटा बच्चा रियलाइज करता है 7 बजे घंटी बजी मतलब पापा आ गए, कहानी की किताब बंद, टीवी स्विच ऑफ, और इमीडिएटली पढ़ाई की किताब चालू। बिकॉज इज कॉन्शियस कि जब पापा का एंट्री होता है दिस इज नॉट द एक्टिंग दैट आई एम सपोज टू डू। तो किस प्रकार का एक्टिंग करना है? प्ले द रोल ऑफ अ हीरो। फ्रेंड्स, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत किरदार हैं जो इनिशियल स्टेज में विलन थे, बाद में हीरो बन गए। कौन कौन से किरदार हैं ऐसे? कौन कौन से हैं? प्राण है, और बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा, और बताइए, परेश रावल। माय गॉड, दिस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव गॉट वेरी गुड जनरल नॉलेज, आई एम रियली इंप्रेस्ड। माय गॉड, दे हैव गॉट अ बैंडविड्थ ऑफ नॉलेज। जब भी लोग बॉम्बे में आते हैं, है ना, फिल्म के सपने सजा कर आते हैं, सब लोग एक ही सपने सजा कर आते हैं, मुझे हीरो बनना है। कोई विलन बनने के लिए थोड़ी ना आता है। लेकिन जब उनको विलन का रोल मिला, दे डिड नॉट क्रिप अबाउट द रोल, क्या मैं हीरो बनने वाला था, कैसा का विलन बन गया, नहीं, दे प्लेड दैट रोल सो वंडरफुली कि धीरे धीरे डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ गई, और कैसे वो देखो विलन से प्रमोट होकर उस डायरेक्टर, उस हीरो का रोल बजाने लगे। उसी तरह ये जो हमको सृष्टि रूपी नाटक में नव कंपेयर योर रोल विथ अदर्स, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, दूसरे जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. एक्सेप्ट द रोल एंड प्ले द रोल ऑफ अ हीरो. और दूसरों के रोल को भी अप्रिशिएट करना बहुत बहुत जरूरी है. प्लीज वी हैव टू अप्रिशिएट अदर्स रोल ऑल्सो. 7 बजे जब हस्बैंड ऑफिस से घर वापस आए तो क्या देखा, वाइफ आराम से सोफा सेट में बैठी है, टेलीविजन ऑन है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं. हस्बैंड वॉज वेरी सरप्राइज्ड. तो ड्रॉइंग रूम में देखा था, ड्रॉइंग रूम वॉज इन टोटल शैम्बल्स. वाइफ से आकर पूछा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम टुडे? वाइफ ने कहा कुछ नहीं. फिर हस्बैंड बेडरूम में गए तो सुबह की वैसी अवस्था. फिर वाइफ से पूछा, बाबा टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कुछ नहीं. हस्बैंड किचन में गए तो सारे रात के भी बर्तन ऐसे ही पड़े. फिर वाइफ से पूछा, टेल मी यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो वाइफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया. वाइफ ने कहा, हर दिन जब आप शाम को 7 बजे ऑफिस से घर वापस आते हो, आप मुझसे एक स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हो. आपका डायलॉग होता है, सारा दिन घर में बैठकर आप करते क्या हो? आज मैंने कुछ नहीं किया. आई डिड नॉट डू एनीथिंग टुडे. हमको लगता है हम ही सुपर हीरो हैं, बाकी सब साइड एक्टर्स हैं. नो, एवरीबडी इज प्लेइंग अ वेरी वंडरफुल रोल. कैन आई अप्रिशिएट दैट रोल? दैट कुड बी द पर्पस ऑफ अ लाइफ. नेक्स्ट क्या है? लाइफ इज अ मिरर. जीवन एक बहुत सुंदर दर्पण है. पर्पस क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट एंड इन प्रोस्पेक्ट. बीच बीच में जीवन रूपी यात्रा में ना रुक कर देखो कि रिफ्लेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, मेरी लाइफ इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. वंस आई वॉज टेकिंग अ लेक्चर फॉर अ वेरी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2007. बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बहुत हाईली पढ़े लिखे थे. तो जब मैंने लेक्चर आरंभ किया तो उनके इमोशंस देख के मेरे को भी स्ट्रेस डेवलप हो गया. माई गॉड, बहुत सीरियसली बैठे. तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मैंने कहा थोड़ा अच्छे तरीके से बोलो ना, गुड मॉर्निंग, नो चेंज इन द इमोशंस. ओके, मैंने कहा फाइन. तो आई थॉट कि यार अगर ऐसा होगा तो मेरे को इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि मैं सब भूल जाऊंगा. तो मैंने कहा, ओके फ्रेंड्स, लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. कोई इमोशंस नहीं. आई एम सो हैप्पी कि आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. मैंने उस ऑडियंस से पूछा, कहा हैप्पी न्यू ईयर? नो इमोशंस. मैंने कहा, बाबा आई एम विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, प्लीज रिफ्लेक्ट बैक ना. तो किसी ने कहा, हैप्पी न्यू ईयर सर. मैंने कहा, यार हैप्पी न्यू ईयर विश करते हो, थोड़ा खुशी से करो ना, है ना. अच्छा, मैंने कहा ओके ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रेंड्स. जब एक नया साल स्टार्ट होता है ना, तो हम बहुत लोगों को हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भेजते हैं, SMS भेजते हैं, ईमेल करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स करते हैं, सबको भेजते रहते हैं. करते हैं क्या? तो ऑडियंस ने कहा यस. मैंने कहा, पिछले साल भी जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था तब भी आपने किया था? यस और नो? बोला यस. मैंने कहा ओके, 365 दिन गए, रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द 365 डेज एंड कैन यू टेल मी योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बाप रे, मैंने देखा जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला तो उनके चेहरे में ज्यादा स्ट्रेस हो गया. मैंने कहा, यार 365 दिन गए, एक तो हैप्पी मोमेंट होना चाहिए ना. नो आंसर. तो आई स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ अनड्यू प्रेशर. इतने सारे लोग बैठे, एक तो हैप्पी मोमेंट होगा ना. नो आंसर. मैंने कहा, ऐसा नहीं कहो ना यार, एक तो हैप्पी मोमेंट होगा. तो एक भाई साहब खड़े होकर गए, यस आई हैड अ हैप्पी मोमेंट. मैंने कहा प्लीज गो अहेड. बोला, जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी थी. मैंने कहा, अरे खुशी की बात है, थोड़ा अच्छे से बोलो ना. बोला, सर कोई ज्यादा खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी जो सेकंड हैंड थी इसे ज्यादा खुशी नहीं हुई. मैंने कहा, अच्छा अच्छा, ओके ओके, होल्ड ऑन. मतलब नई गाड़ी खरीदते तो ज्यादा खुशी होती? बोला, सर ये कोई पूछने की बात है? मैंने कहा ओके, आई गिव यू एन ऑप्शन. ये जो रस्ते में बहुत सारी गाड़ियां चलती है, कैन यू गेस व्हाट इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट व्हीकल? कौन सी होगी सबसे कॉस्टली गाड़ी? स्थूल गाड़ी की बात कर रहा हूं. कौन सी स्थूल गाड़ी? तो उन्होंने कहा मर्सिडीज बेंज. मैंने कहा ओके, आई टेक इट अप. कितनी कॉस्ट होगी? ही टोल्ड मी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़. मैंने कहा, देखो ये जो गाड़ियां होती ना, लाइक मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, फेरारी, ये कस्टमाइज गाड़ी होती है. मारुति 800 की तरह मास प्रोडक्शन नहीं होता है. आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से वो आपको गाड़ी बनाकर देते हैं. मैंने कहा, अगर आप ये मर्सिडीज बेंज खरीदते तो खुशी होती है? बोला, सर ये कोई पूछने की बात, आई विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैंने कहा ग्रेट, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं. ईश्वर ने हमको भी एक बहुत सुंदर मर्सिडीज बेंज दी है, ये जो शरीर. कैन यू गेस व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मशीन? तो उन्होंने इमीडिएटली जवाब दिया, नहीं सर, इसका कॉस्टिंग नहीं कर सकते, बहुमूल्य है, अमूल्य है, प्रेशियस है. मैंने कहा फाइन, बट अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया. दे ट्राई टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मशीन. कैसे? सपोज किसी व्यक्ति के आंखों में प्रॉब्लम है, यू गो टू एन आई स्पेशलिस्ट. हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम तो किडनी स्पेशलिस्ट. सारी कॉस्टिंग की गई. एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू? एंड आई कोट डॉक्टर गुप्ता हु टोल्ड मी दिस फिगर. और जिस दिन उन्होंने ये मुझे फिगर बताया, वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. जब उन्होंने कहा प्रोफेसर, The economic cost of this wonderful machine is approximately 220 crores. 220 crore ki ye wonderful Ishwar ne gaadi di hai. Abhi taaliyan to bajaiye. Recently I was invited by the University of Kathmandu. To sare faculty members ko main lecture le raha tha. Jab maine kaha ye sharir ki economic cost 220 crore hai. To ek professor khade hokar kehte, "Sir, I need a clarification." मैंने कहा, "Go ahead, what clarification do you want?" बोला, "Sir, ये 220 करोड़ जो आपने बोला वो इंडियन रुपीज है या नेपाली करेंसी है?" मैंने कहा, "क्या बात?" मैंने कहा, "इंडियन रुपीज है." तो इमीडिएटली स्टार्टेड कैलकुलेटिंग और इमीडिएटली कहा, "सर, नेपाली करेंसी में इट कम्स आउट टू 352 करोड़ सर, मोर कॉस्टली इन नेपाल, आई शुड बी मोर हैप्पी इन नेपाल." मैंने कहा, "नेचुरली यार, यस." तो फ्रेंड्स, ना जीवन में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हैप्पी इंसिडेंट्स आते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं. रिफ्लेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि ईश्वर ने हमको इतना अच्छा जीवन दिया है, हर पल हर क्षण हम इसको जरूर जरूर इंजॉय करना है. लास्ट क्या है, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस. जीवन एक बहुत सुंदर अनुभव है. शेयर इट विथ अदर्स, दूसरों के साथ शेयर करो. एंड रिसेंटली मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमको ये अच्छे एक्सपीरियंस क्यों नहीं होते हैं. अगर आपको अच्छे एक्सपीरियंस करना है ना, तो डू समथिंग फॉर एनीवन अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशंस. अगर आपको सचमुच वो सुख और शांति, वो हैप्पीनेस, वो ब्लिस चाहिए ना, तो इस समाज के लिए कुछ ही करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, रात को हमको इतनी गहरी नींद आएगी कि कुछ पूछो मत. एंड वन ऑफ द एक्सपीरियंस विच आई वुड रियली लव टू शेयर is the experience of our honorable president, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam ji. Dr. Kalam was recently went to a foreign tour. Aur papers mein bahut clearly likha tha, jab wo audience ke sath interact kar rahe the, to ek student ne pucha, "Sir, what is the most happiest moment of your life?" The Dr. Kalam in turn asked the audience, "Can you guess what could be my happiest moment of my life?" Aur ye bahut clearly headlines mein papers Bombay mein aaya hua tha. तो कुछ लोगों ने कहा, "सर, द डे द त्रिशूल नाग मिसाइल पीएसएलवी एएसएलवी वाज लॉन्च्ड." मैंने कहा, "फाइन, बट एनी अदर दिस वन?" बोला, "सर, द डे यू वर गिवन द भारत रत्न अवार्ड." बोला, "फाइन, बट देन दैट वाज नॉट द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट, एनी अदर आंसर्स?" बोला, "सर, द डे यू वर नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री." बोला, "फाइन, बट दैट वाज नॉट द हैप्पीएस्ट मोमेंट." फिर बच्चों ने पूछा, "टेल मी सर, आपका हैप्पीएस्ट इंसिडेंट क्या है?" और डॉक्टर कलाम्स क्लासिक आंसर वॉज, विच वॉज पब्लिश इन द न्यूज पेपर्स, "द डे DRDO was able to develop lightweight stretchers for polio patients." और डॉक्टर कलाम अपना अनुभव लिखते हैं कि इनिशियली जब वो स्ट्रेचर्स जो पोलियो पेशेंट्स यूज कर रहे थे, इट वॉज वेरी वेरी हैवी और बच्चों को बहुत तकलीफ हो रहा था. सो दे हैड अ प्रोजेक्ट वेयर दे ट्राई टू ब्रिंग डाउन द वेट ऑफ द स्ट्रेचर्स. और डॉक्टर कलाम अपना अनुभव लिखते हैं कि जब वी ड्रास्टिकली रिड्यूस द वेट ऑफ द स्ट्रेचर्स, अप्रॉक्सिमेटली नाउ इट्स अराउंड 300 to 400 ग्राम्स. और डॉक्टर कलाम कहते हैं, जिस दिन हमने वो टेस्ट ट्रायल कर रहे थे, बहुत सारे पोलियो पेशेंट्स को बुलाया और जब बच्चों को ये स्ट्रेचर्स दिए और जब बच्चे पहनकर भागने लगे, खेलने लगे, दौड़ने लगे, तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने उनको पेरेंट्स को देखा और बहुत पेरेंट्स के चेहरे में आंसू आ गए थे, दे वर इन टोटल टीयर्स. और वो जो टीयर्स जो मैंने देखा, दैट वॉज माई मोस्ट हैप्पीएस्ट मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ. करेक्ट. And that is what is very, very important. Life is an experience. Go ahead. I just take another 5 to 7 minutes. Life is not just a gap between birth and death. Ab main aapko real life ka purpose batata hoon. Friends, ye jeevan sirf janam aur maran ke beech ka samay nahi hai. Can I look this life on a broader perspective, on a wider canvas? To kya hai life? Now, this is what I wanted to tell you. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इटर्नल जर्नी जो ईश्वर आकर हमको समझाते हैं. और बिलीव मी माई डियर फ्रेंड्स, इसका ज्ञान आप जरूर सीखना और समझना. ये जीवन एक चार युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. अभी कौन सा युग चल रहा है? यस, कलयुग चल रहा है. और ये प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद दिन जरूर आता है, तो कलयुग के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा. दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर. There is always a silver lining in the dark clouds. There is always a light at the end of the dark tunnel. Har raat ke baad din zarur aata hai. To agar ek kala yug hai, to ek naya savera zarur aayega. Aur humne kitne aise part bajaye hain. It's a cycle. Because time is cyclic. To इस तरीके से चक्र घुमाते रहते हैं जो आप रियल ये यहां पर ये ज्ञान सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे। अब मैं आपको रियल बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको इस जर्नी में लेकर जाता हूं। एक समय था सतयुग एंड त्रेता युग, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स। और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, उस समय मालूम क्या था, उस इटर्नल जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन जहां पे हम डांस करेंगे, बहुत सिंगिंग करेंगे, एक ऐसी सुंदर दुनिया थी। आप वापस जाकर ना स्टूडेंट्स को एक खुशखबरी देना और कहना वहां पे एग्जाम्स भी नहीं होंगे और पढ़ाई भी इतनी स्ट्रेसफुल नहीं होगी जितनी आज होती है, क्योंकि आजकल मम्मी डैडी को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बट वहां पे डांस सिंगिंग होगा। सतयुग और त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, जहां पे हम सोल कॉन्शियस से शिफ्ट होकर बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। और वहां पे जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर को याद करते हैं, और जो सारा भक्ति हम जो करते हैं एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द्वापर युग। तो वहां से प्रेयर स्टार्ट हुए, वहां से अलग अलग शास्त्र लिखे गए, इट वॉज ऑल अबाउट बुक्स। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड वी रीच कलयुग जो आज हमारे यहां देख रहे हैं। एंड कलयुग में एवरी मिनट इज अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज फॉर अस। अब व्हाट इज द नेक्स्ट? और ऐसे कलयुग के अंत का समय पर स्वयं परमात्मा ये धरती पर आते हैं और एक बहुत वंडरफुल युग, अ ट्रांजिशन युग का समाचार हमको देते हैं। दैट्स द नेक्स्ट युग विच इज कॉल्ड ए संगम युग। एक कलयुग और सत्युग का जो बीच का समय है वो है संगम युग, जहां पर ईश्वर आकर एक बहुत सुंदर ये ज्ञान बताते हैं, दैट इज अ इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। ये 5000 वर्ष का ड्रामा कैसे ऊबहू रिपीट होता है, हाउ टाइम इज साइक्लिक। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये विद्यालय में ऑन अ साइंटिफिक बेसिस भी इसका बहुत बहुत रिसर्च किया गया है। आप हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग में भी जा सकते हैं, और अगर हो सके तो हमारा जो वहां पे एकेडमी बनी हुई है वहां रूम नंबर 13 विच इज कॉल्ड अ स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, वहां पर भी आप जाइए, आपको इसका साइंटिफिक बेसिस, लॉजिकल बेसिस, रैशनल बेसिस भी बताया जाएगा, ये इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। और यहां पे परमात्मा कर क्या कहते हैं, वो कहते हैं बच्चे लाइफ इज अ वेरी ब्यूटिफुल मिरर, चेक करो और चेंज करो। और अगर हमें एक नई दुनिया में जाना है तो अपने आप को चेंज करना है, सो दैट वी बिकम एलिजिबल टू गो टू दैट ब्यूटिफुल वर्ल्ड विच इज कॉल्ड अ सत्युग। लास्ट स्लाइड, कहते हैं फ्रेंड्स एक्सपीरियंस इज लाइफ, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वेरी वंडरफुल कहते हैं शेयरिंग एक्सपीरियंस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन एक बहुत सुंदर अनुभव है और ये अनुभव सबके साथ शेयर करना ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है। और ईश्वर ने हर बीकेस को ये बहुत क्लियर कट ये श्रीमत दी है कि बच्चे बाप का परिचय सबको दो और ये खुशखबरी सबको दो कि ईश्वर ये धरती पर आ चुके हैं और वो एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू कि दुनिया चेंज होगी और अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज गोइंग टू कम। नाउ व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान, दो बातें मैं बस आपको बताऊंगा विच रिसेंटली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हर एक इंडियन को करने को कहा है। नंबर वन इज ईच वन टीच वन, क्या टीचिंग करना है, स्थूल नॉलेज इन्फॉर्मेशन तो सभी को है लेकिन कैन वी टीच पीपल द हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ, नंबर वन ईच वन टीच वन। और नंबर टू क्या है, डॉक्टर कलाम ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, ईच वन सो अ सैपलिंग, एक वृक्ष एक छोटा सा पेड़ जरूर जरूर लगाना। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, बहुत डिस्कशंस होते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल व्हाट एम आई डूइंग। तो मैं आपको एक सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आपके बर्थडे के दिन या आप अपने बच्चों के बर्थडे के दिन उनको किसी गार्डन में लेके जाना विच इज वेरी वेल मेंटेन्ड, और अपने बच्चे से एक छोटा सा सैपलिंग जरूर लगाना, क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वो पेड़ भी बड़ा होता जाएगा और बहुतों को छाया देगा, इट विल गिव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, और नेचुरली आपके बच्चे को बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। एंड में मैं एक छोटी सी बात बताकर एंड करूंगा, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, हे खुदा मेरे दोस्त मुझे उस दिन का इंतजार है जब ये जीवन आपके काम आ जाए, जब ये जीवन आपके काम आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स, ओम शांति, हैव अ वेरी वंडरफुल नाइट स्टे एट ज्ञान सरोवर, ओम शांति।
Thank you very much, Swaminathan Bhai, for your wonderful talk. And he spoke about the purpose of life in a very beautiful way and entertaining way as well.